This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Forecasters say Tropical Storm Beta is making a slow crawl to the United States shores of Texas and Louisiana, casting worries about heavy rain, flooding, and storm surge across the Gulf Coast. The system is expected to make landfall sometime Monday. Coastal communities have begun preparing for the storm, some even issuing voluntary evacuation orders. Two other systems are also whirling in the Atlantic Basin during this exceptionally busy hurricane season. If Beta makes landfall, it will be the ninth named storm to hit the continental U.S. in 2020, tying a record set in 1916. Three people have died after Cyclone Ainos, a rare storm known as a metacane, battered Greece, flooding streets and homes, Greek authorities said Sunday. Ainos uprooted trees and caused power cuts on the Ionian Islands and the western Peloponnese. It swept through central Greece Saturday, hitting the cities of Karditsa and Pharsala before moving south to the island of Crete. Strong winds stoked a wildfire in mountains northeast of the U.S. city of Los Angeles in California, prompting authorities to issue evacuation orders Saturday for desert communities that lost some homes a day earlier. The weather pattern was similar Friday when winds pushed the Bobcat fire onto the desert floor, causing it to explode in size and destroy homes. The extent of this destruction is not immediately clear. U.S. officials have intercepted an envelope addressed to the White House that contained the poison ricin. That's according to a U.S. law enforcement official who spoke to the Associated Press Saturday. The U.S. official says the envelope was intercepted at a government facility that screens mail addressed to the White House and President Donald Trump. In Canada, a statement from the Royal Canadian Mounted Police says the letter appears to have originated in Canada. This is VOA News. A U.S. judge early Sunday blocked the Commerce Department from requiring Apple and Google to remove WeChat for downloads by late Sunday. A U.S. magistrate judge in California said in an order that WeChat users who filed a lawsuit, quote, have shown serious questions going to the merits of the First Amendment claim, the balance of hardships tips in the plaintiff's favor, end quote. Meanwhile, U.S. President Donald Trump touted what he called a fantastic deal that could see Oracle and Walmart become U.S. tech partners for TikTok, which the president is seeking to ban over security concerns. Speaking to reporters on the White House South Lawn, President Trump says if the deal gets done, TikTok will sever any overseas ties.
It will have nothing to do with China. It'll be totally secure. That'll be part of the deal, and that will be both Oracle, as you know, and Walmart. And I think it's going to be a fantastic deal.
About 100 million Americans use the short video app. The TikTok deal. China, relatives of some of the 12 Hong Kong people arrested by China at sea last month, demanded the city's government check on their condition and ensure lawyers appointed by the families, not the Chinese government, can meet with them. The 12 were arrested August 23rd for illegal entry into mainland Chinese waters after setting off from Hong Kong in a boat bound for self-ruled Taiwan. All were suspected of committing crimes in Hong Kong related to the anti-government protests that erupted last year. 10 had been charged, released on bail, and not allowed to leave the former British colony, and all are now being detained in neighboring Shenzhen. Relatives of some of the detainees held a news conference outside the Hong Kong police headquarters Sunday to express their frustration with local authorities. U.S. Democratic presidential nominee Joe Biden will speak in Philadelphia Sunday about his rival President Donald Trump's plan to name a third justice to the Supreme Court, a move that would cement a 6-3 conservative majority. President Trump said Saturday he will make his nomination this week. He mentioned Amy Coney Barrett of the Chicago-based Seventh Circuit and Barbara Lago of the Atlanta-based 11th Circuit as possible candidates to fill the vacancy created by Friday's death of Ruth Bader Ginsburg. Italians began voting Sunday in a raft of local ballots in a referendum with the ruling coalition under pressure in its first electoral test since the coronavirus crisis. Voters have largely approved of Prime Minister Giuseppe Conte's handling of the pandemic, but recent opinion polls suggest this will not help his coalition allies in the vote for the heads of seven regions and mayors in almost 1,000 towns. By remote, I'm Diane Roberts, VOA News.
Thank you. ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांझा। आज के शो में आप सुनेंगे एंटरटेनमेंट राउंड अप, आपके मैसेजेस, और मारिया आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगी, और बातचीत होगी और गीत सुने जाएंगे गुलूकार रिजवान अनवर के। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस और मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांझा। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांझा, और आप गुफ्तगु सुन रहे हैं गुलूकार रिजवान अनवर की। बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे लिए टाइम निकालने का। ये बताइए कि गुलूकारी के ये जरासीम कहाँ से आए हैं आपने?
मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुलूकारी के जरासीम जो है वो मेरी मदर की तरफ से आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें बचपन में यही देखा है कि वो किचन में है तो वो कुछ गुनगुना रही हैं, और वो उनकी आवाज़ सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा ख्याल है मुझे वहीं से ये जो है ना मिले हैं।
ये फैसला कैसे हुआ कि इस जानिब आना है?
मेरे दोस्त जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते थे। हम लोग किसी भी गैदरिंग में, कहीं पे पार्टी में, कहीं पे भी बैठते थे, उठते थे, कोई वीकेंड हुआ करता था तो हम लोग म्यूज़िक बजाते थे। और वो जब एक इंसान म्यूजिशियन नहीं है और उसे नहीं आइडिया है तो वो कैसे म्यूज़िक बजाता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होता है नॉर्मली क्या कहते हैं उसे, टेबल बजा के या कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास पड़ी हुई है उसको एक रिदम में बजा के उसके साथ गाया करते थे। तो वो दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि आप ज़रा प्रोफेशनली इस चीज़ को देखें, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे भी वैसे नॉर्मली फील हुआ करता था कि यार ये जो लोग गा रहे हैं, OST सुन रहा हुआ करता था मैं, या म्यूज़िक कोई भी सुनता था तो उनके साथ जब मैं गाता था तो मुझे यही फील आती थी कि मैं भी गा सकता हूँ और मुझे ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा। तो मैंने फिर उसके बाद एक स्टूडियो में जाके अपनी पहली रिकॉर्डिंग की, तो उसके बाद बूस्ट ही मिल गया बड़ा शदीद किस्म का कि भाई हाँ भाई ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स और फिर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला बन गया बड़ा अच्छा।
जी रिजवान, इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना मुकाबला है, इतने चैनल्स हैं और अब तो सोशल मीडिया के जरिए आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, तो अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है?
जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे अगर आप टीवी चैनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टीवी चैनल्स में इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है ना वो बहुत बहुत कम स्लॉट है, यानी इंटरटेनमेंट साइड पे बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा। और लोग असल में इसीलिए सोशल मीडिया साइड पे जो है ना कन्वर्ट हुए हैं, और सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट को आपके सामने, हम सब के सामने लाने के लिए। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है एट द सेम टाइम उसका उतना ही नुकसान भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं जो कि वायरल हुई होती हैं और वो बिल्कुल बुरी और फजूल चीज़ें होती हैं, और जो डिज़र्विंग जो आर्टिस्ट है फिर उसको इतनी माइलेज या इतना वो पजीराई नहीं मिलती। और यू नो कि लोग उस चीज़ को क्लिक करते हैं जिसके बड़े व्यूज़ हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक तो नंबर्स की गेम नहीं है, ये आपकी आर्ट की बात है जो कि जिसके ऊपर हर इंसान बहुत मेहनत करता है और वो अपना काम करता है और लोगों के सामने लेके आना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको एक दूसरा रुख दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया का, वो ये भी है कि वो कुछ व्यूज़ के बाद डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं, तो ये भी सिलसिला है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, लेकिन उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को क्या सुनाना चाह रहे हैं, आपके अंदर से दिल से क्या आवाज़ आ रही है कि आप क्या करना चाहिए, जो चीज़ आपकी बेस्ट है आप उसे करें तो ज़रूर आपको एक दिन यू नो कि आप जो चाहते हैं वहाँ पर वो जगह बना सकेंगे।
मेरे सारे ख्वाब जली ने मेरे
سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ شو سن رہے ہیں. اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں گلوکار رضوان انور سے اور میں ہوں سعدیہ زبرانجھا. رضوان جی بتائیے کہ خود کو مسلسل منوائے رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟
آپ کو مستقل مزاجی سے کام لینا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی, فوکس کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا چیزوں کو اور بیک ٹو بیک ریلیزز کرنی پڑیں گی. یعنی ریلیزز سے مراد کہ کوئی بھی جو آپ کا کام ہے, آپ اگر ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, میوزیشین ہیں, یعنی آپ پروڈیوسر ہیں, کچھ بھی, اس کے لیے مستقل مزاجی بڑی ضروری ہے اور آپ کو بڑا فوکس کر کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ فل ٹائم جاب ہے, یہاں پہ کانسیپٹس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں میوزیشینس کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں میوزک کو سن کے, ان کو اچھے برے کی تمیز آنا شروع ہوئی ہے. جیسے کہ ایک گانا ریلیز کریں, اس کے بعد میرا جو سانگ دوسرا تھا 2010-2011 میں نے لائیں لائیں ریلیز کیا, دوسرا سانگ 2013 میں آیا, لیکن اس دوران جو دو سال کا گیپ تھا اس میں بھی لوگ جو ہے نا, وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے, یہ کیا سلسلہ, وہ بھولے نہیں تھے. تو ابھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ فاسٹ پیس ہے, اگر آپ ایک دو مہینے غائب رہتے ہیں نا تو لوگوں کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, اس لیے وہ موو آن, یو نو کہ وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو, ایک آدھ دفعہ کہیں گے آپ کے فینس جو بھی ہوں گے کہ آپ کی البم یا نیو سانگ کب آ رہے ہیں, کیا سلسلہ ہے, تو وہ مطلب وہ پھر بھول, یہ جو آج کل کے ٹائم کی بات کرو یہ, اس میں تو وہ بالکل بھول جاتے ہیں. تو مستقل مزاجی بہت ضروری ہے میرا خیال ہے. ایک سانگ کے بعد آپ کے پاس ایک مہینے کا گیپ آپ میکسیمم رکھیں, اسی میں اس کی مارکیٹنگ کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر کنٹینیو کریں.
آپ کیسے گلوکار کے طور پر خود کو کلاسیفائی کرتے ہیں؟
میں جو خود کو بہت کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں سمجھتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, اور جو میری پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بھی کانوں کو میری گائی ہوئی چیز بری نہ لگے, ایٹ لیسٹ اگر وہ اسے بہت پسند نہیں آ رہی تو کانوں کو بری بھی نہ لگے. میں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں اور بہت ڈرتا ہوں کوئی بھی چیز ریلیز کرتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ دے میری کوئی چیز, تو میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اپنے کام پہ.
رضوان کون سی خوبی یا مہارت ہے جو آپ کی گلوکاری کے سفر میں آپ کی مددگار رہی ہے؟
بھائی میں خود کے اندر کوئی مہارت نہیں سمجھتا ہوں, خدا کی دین ہے الحمدللہ. جتنا تھوڑا بہت اچھا برا جیسا بھی ہے وہ خدا کی دین ہے, اس کی جو دیوی عطا ہے اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ میں جو بیسٹ کر پاتا ہوں وہ میں گا سکتا ہوں, اور کمپوزر میں مطلب کمپوز کر سکتا ہوں, سانگز میں لکھ سکتا ہوں. تو یہ عطا ہے اس پاک ذات کی, تو جس نے ایک سلسلہ چلایا ہوا.
अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं गुलुकार रिजवान अनवर की। आप खुद को एक जेनुइन गुलुकार कैसे बनवा सकते हैं या ये यकीनी कैसे बना सकते हैं कि किसी गुलुकार की छाप आप पर ना लगे और ऐसा ना लगे कि ये गाना तो कहीं और भी सुना है?
भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जेनुइन सिंगर कैसे बनवा सकते हैं, ये जो बात है ना ये थोड़ी सी ना मुश्किल है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ म्यूजिक, देखिए मेरा मानना है म्यूजिक सुनने की चीज़ है लेकिन यहाँ पे म्यूजिक जो नॉर्मली है ना लोग देखते हैं म्यूजिक, तो ये बड़ा डिफरेंस आ गया है। आज से 15 साल पहले आप अगर चले जाएंगे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आप इस हल्की पुल्की वीडियो पे आप गुजारा करते थे, लोग मासेस में सुनते थे, जाती थी चीज़ और टीवी के थ्रू जाती थी और बहुत अच्छे काम हुआ करते थे, बड़े सिंपल से बड़े खूबसूरत से एंटरटेनिंग भी होते थे और यू नो ये सिलसिला था। अभी लोग जो है ना वो एक पता नहीं कोई एलियन देखना चाहते हैं जो कि देखने में कोई शाहरुख खान हो और गाने में आवाज़ उसकी मोहम्मद रफ़ी या यू नो सुखविंदर जी की आवाज़ हो और उसने कपड़े फलाने ब्रांड्स के पहने हो और लड़की कोई ऐसी हसीन होनी चाहिए कि वो यू नो मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को म्यूज़िक को सुनना चाहिए उस, क्योंकि लोग वो म्यूज़िक सुनने की चीज़ है देखने की चीज़ बिल्कुल नहीं है, चूँकि आजकल ज़रूरत है तो फिर हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता है। हम लोग काम करते हैं और बड़ा ठीक ठाक काम होता है, 3 या 4 या 5 मिनट के गाने के पीछे बहुत सारा काम होता है अगर आप देखें, और एक लम्हे में यानी कि एक 10 सेकंड्स में आप जज कर लेते हैं कि यार ये तो फारिग है या ये बहुत अच्छा है, तो यू नो थोड़ा सा एक दफ़ा उसे सुनना चाहिए। कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, मैं आपको बताता हूँ, एक तो टाइम इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी जो कि हम करते हैं इस काम के अंदर, और दूसरी चीज़ जो है वो आप ऑब्वियसली आपके पैसे भी लग रहे हैं, स्टूडियोज रिकॉर्डिंग शिफ्ट्स आप लेते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं सब साथ, तो उसके बाद फिर आप वीडियो पे आते हैं, वीडियो के बाद प्रमोशनल स्टाफ और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बाद आपकी एक प्रोडक्ट तैयार होती है, आप मार्केट में रिलीज करते हैं तो उसको एक दफ़ा सुने ज़रूर। और दूसरी बात ये है कि छापने वाली बात नहीं होती है भाई, 700 हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा गाने हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक इंसान के दिमाग में एक मेलोडी या एक धुन आई है वो किसी दूसरे इंसान के दिमाग में भी आ सकती है, तो ये छापना नहीं होता, इंसान जो जानबूझ के करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको पता होगा काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानबूझ के नज़र आ रही हैं कि भाई ये बिल्कुल उससे छापा गया, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं कभी कंपोज कर रहा होता हूँ तो ये जो आपकी बात है वैसे ये बड़ी सही है कि मुझे ये सोचना पड़ता है कि मेरी मेलोडी किसी के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे जा तो नहीं गई, और यू नो कि वो कंपोज करने में चीज़ों को देखना पड़ता है लेकिन जानबूझ के करना है समथिंग डिफरेंट।
अभी तक आपकी कौन सी परफॉर्मेंस को आप बेहतरीन समझते हैं?
मेरा एक ओरिजिनल सॉन्ग था नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 4 में आया था, उसका नाम था तू मेरा नहीं, वो मुझे लगता है अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी जो मैंने दी वहाँ पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस मिला वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग अच्छे टैलेंटेड म्यूजिशियंस से मेरी मुलाकात हुई, उनमें बहुत सारे नाम हैं, लियो ट्विंस हैं उनमें, सिप्तान खालिद हैं, हमज़ा तनवीर हैं, बिलावल लाहूती हैं, यू नो ये अभी इंडस्ट्री के अच्छे नाम हैं, ये बिल्कुल वो ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि हमें जुल्फी भाई ने मौका दिया और हम लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस है और परफॉर्मेंस है वो, तो मैंने उसे बहुत एंजॉय किया था।
अच्छा ये बताइए कि गुलुकार पैदाइशी होता है या इसे आप समझते हैं कि पॉलिश किया जा सकता है?
तो जी गुलुकार पैदाइशी होता है, ये बात आप मान लें, कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल जैसे क्लासिकल घरानों में ऐसे होता है कि वो अपने जो भी बच्चा पैदा होता है उसको वो ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर तो कोई पैदाइशी नहीं भी है यानी कि वो उसके गले में सुर नहीं भी है तो वो प्रैक्टिस इस तरह की करवाते हैं कि वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रैक्टिस है, और मतलब ऐसा भी है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक लफ्ज़ नहीं सीखा किसी से, अल्लाह ताला की अता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे समझ आता है, मेन चीज़ जो होती है गायकी में वो आपकी टेम्पो होती है कि आप एक रिदम में गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं या गा सकते हैं या नहीं गा सकते, उसकी प्रैक्टिस हैं, अगर तो आपकी उस प्रैक्टिस से भी वो रिदम ठीक नहीं होता, टेम्पो सही नहीं गा सकते, तो आपका पैदाइशी सिंगर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेसुरा बेशक चल जाता है लेकिन बेताला कभी भी नहीं चलता, تو مائی پوائنٹ از کہ پیدائشی سنگر ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے زندہ مثالیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شاید پریکٹس بھی نہیں کیا ہوگا اور آج وہ انڈسٹری کے بڑے نام ہیں. کچھ گفٹڈ ہوتے ہیں اور میں نام لے سکتا ہوں آپ کے پاس بڑے اچھے سنگر ہیں, محسن عباس حیدر, آپ کے پاس حمزہ تنویر ہیں, اور اس کے بعد سپتین خالد ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, یعنی آپ یو نیم اٹ, آپ کے پاس بہت سارے ایسی لسٹ نکل آئے گی جو کہ نہیں سیکھے ہوئے لیکن یہ کہ وہ گفٹڈ ہیں, پیدائشی, میں انہیں کہوں گا پیدائشی سنگرز ہیں.
آپ کو مجمع کے سامنے گانا اچھا لگتا ہے یا ریکارڈنگ پسند کرتے ہیں؟
لائیو کسی کے سامنے یہ ایک مجمع میں پرفارم کرنا, تو ایک سنگر کی جو ہے نا وہ جو ہے نا جو آخری جو خواہش جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آرٹ ان لوگوں کو سنا رہے جو اسے سننے آ رہے ہیں, اور وہ یہ بیسٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ اور یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ بہت اچھی چیز ہے, بٹ جب آپ کو سننے کے لیے کوئی آیا اور آپ مجمع کے سامنے گا رہے ہیں تو وہ تو کہانی کچھ ڈفرینٹ ہے نا, وہ تو نیکسٹ لیول ہے سر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو, اور میں ہوں سعدیہ زبران جھا, اور آپ گفتگو سن رہے ہیں گلوکار رضوان انور کی. رضوان, خود کیسا میوزک سننا پسند کرتے ہیں؟ کسی گلوکار کو خاص طور پر سنتے ہیں, اور موسیقی کے خود آپ کتنے دل دادا ہیں؟
محمد رفیع واحد انسان ہے شاید جن کی وجہ سے میں ابھی تک گا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بہت پہلے ان کا کوئی ایک گانا سنا تھا تو مجھے وہ آواز اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے شاید مجھے شوق ہی پڑ گیا کہ بھائی میں بھی گانے سنوں یار, یہ تو بڑی چیز زبردست چیز ہے. تو محمد رفیع میرے فیوریٹ سنگر ہیں, انہیں کا میوزک سنا میں نے بہت سارا, اور انہیں کو سن سن کے میں نے پریکٹس کیا, اور میں نے جتنا جو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو جو مجھ سے سنتے ہیں وہ میں نے سب انہیں سے سیکھا, اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اسٹل. اس کے بعد نصرت فتح علی خان صاحب, اس کے بعد سونو نگم جی, سکھویندر سنگھ فیوریٹ ہیں, یہ تو کسی کو بھی برے نہیں لگ سکتے, بہت اچھے ہیں. میں خود کوئی بھی میوزک سن لیتا ہوں, غزل بھی سن لیتا ہوں, لائک کوئی پاپ سانگ اچھا آیا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, ہر قسم کا میوزک سنتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ کمپوز کرنے میں نا ذرا ورائٹی رہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھیل سکتے ہیں رائٹ لائن. مجھے کوئی بھی میوزک جو ہے نا وہ بور نہیں کرتا, مجھے ہمیشہ میوزک سن کے ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو, اور میں ہوں سعدیہ زبران جھا, اور آپ گفتگو سن رہے ہیں گلوکار رضوان انور کی. آپ کی فیملی میں کون کون ہے, اور آپ کی فیملی میں آپ کا سب سے بڑا پرستار کون ہے؟
ہم پانچ بھائی ہیں, میری ایک سب سے بڑی بہن ہے, اور بھائیوں میں میں تیسرے نمبر پہ ہوں. مجھ سے دو چھوٹے بھائی ہیں اور دو بڑے بھائی ہیں, اور واحد میں ہوں جو میوزک کرتا ہوں, اور وہ سب میرے سب بہت پیار کرتے ہیں سب, اور میرا میوزک سنتے ہیں, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. کچھ ان میں سے ایک دو بھائی ایسے ہیں جو کہ ان کو زیادہ میوزک کا پتہ نہیں, لیکن وہ میں کچھ بھی کہتا ہوں وہ کہتے ہیں یار تم نے بہت اچھا کیا ہے, بیسٹ, بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو یو نو कि ऐसे मेरे मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया म्यूज़िक के लिए, मेरी मदर ने किया, सब ने, किसी ने कोई रोक टोक नहीं दी। और सबसे बड़े फैंस जो होते हैं ना, वो आपके करीब के सब लोग होते हैं, और यू नो आपके घर वाले स्पेशली, और आपके दोस्त जिन्होंने आपको मतलब एक इनक्रेज किया होता है एक काम करने के लिए। तो मेरे सबसे बड़े फैंस ये हैं, कुछ और बहुत सारे फैंस हैं जिनके मैं नाम नहीं शायद ले सकूंगा, बहुत सारे हैं जो कि बड़ा प्यार करते हैं, जिनकी वजह से शायद अभी तक म्यूज़िक किया भी जा रहा है मेरी तरफ से थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन लोगों के प्यार की वजह से। और इसी तरह करता रहूँगा, इसी तरह ही इंशाल्लाह ताला आपको सुनाते रहेंगे अच्छे अच्छे गाने, और कोशिश है।
अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ का रहे, पाकिस्तान में रहने के लिए कौन सा शहर आपको पसंद है?
तालीम पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, देखिए एक जो शैतान बच्चा होता है ना एक घर में, वो मैं था, पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। मैंने फिर भी संभाव जो है ना अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है, उसके बाद मैंने कहा बस इससे ज़्यादा मैं मेरे बस की बात नहीं है, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ, तो वो म्यूज़िक था और वो जो मैं आज तक कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी यूरोप साइड पे परफॉर्मेंसेस, राइट लेफ्ट हर जगह भी मैंने काफ़ी, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा की हैं, और ये है कि बड़ा इन्जॉय करते हैं हम लोग म्यूज़िक को, म्यूज़िक को इन्जॉय करना चाहिए। अगर तो म्यूज़िक के साथ आपके दिमाग में कोई बिजनेस चल रहा चले वो भी अच्छी बात है, कुछ लोग डिपेंडेंट हैं यानी उनका ब्रेड एंड बटर ही म्यूज़िक है तो वो भी ठीक है, लेकिन म्यूज़िक जो है ना वो आप ज़्यादा खुल के तब कर सकते हैं जब आप, आपके अंदर म्यूज़िक है और आप उस फील को सुनाना चाहते हैं लोगों को जो आप बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको मज़ा करवाती है। पैसे आप पैसे वैसे आ जाते हैं ऑनेस्टली, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे लोग सुनेंगे वो स्टैंड आउट कर जाएगी लोगों को पसंद आ जाएगी, तो फिर पैसों की, फिर पैसे आपकी फ़िक्र करेंगे, आप पैसों की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो ये सीन है। पाकिस्तान में मैं मुझे कराची बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो मैं, वैसे तो मैं लाहौर में पैदा हुआ और मैंने जो बेसिक मेरी तालीम है और जो सब कुछ है मेरी, मैं पला बड़ा हूँ लाहौर में हूँ, और कराची भी मैंने, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं मेरे सब वहाँ पे हैं, फैंस मेरे बहुत सारे हैं वहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि पंजाबी मैं सॉन्ग ज़्यादा गाता हूँ, और कराची से मेरी एक बहुत अच्छी तादाद जो है ना फैंस की वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे बड़ी हैरानगी और ख़ुशी भी होती है कि पंजाबी नॉर्मली कराची में जो है ना वो बोली नहीं जाती, वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और कुछ समझ के भी, कुछ जिन लोगों को नहीं भी समझ आती सब वो करते, तो जो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जो मेरी फेवरेट जगह रहने की ऑब्वियसली जहाँ मैं पैदा हूँ लाहौर है, और हमेशा रहेगी, और इससे कुछ बदल नहीं सकता। प्यार मेरा तू तकड़ी चितोलना
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं गुलुकार रिजवान अनवर की। कोई मौसीकी का आला जो आप बजा सकते हैं?
मुझे गिटार बजाना आता है लेकिन वो मुझे इतना आता है कि मैं कंपोजिशंस बनाने के लिए ना मुझे जितना आना चाहिए मुझे उतना आता है तो मैं वो उतना सा बजा लेता हूँ कि मतलब खुद भी इंजॉय कर लूँ, किसी दोस्तों में बैठा हूँ थोड़ा सा अगर इस तरह का माहौल है तो हम लोग थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा गिटार बजाना नहीं आता।
मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली है क्या आपने?
मौसीकी की कोई तरबियत हासिल नहीं की मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सिर्फ मैडम नूर जहाँ, मोहम्मद रफ़ी, जोसेफ फ़तेह अली खान और पॉप म्यूज़िक में अगर रॉक साइड पे आते हैं जुनून को सुना है मैंने बहुत ज़्यादा। अब भी आजकल अरिजीत बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे, पपोन है बहुत ज़्यादा फेवरेट, उसके अलावा सिकंदर जी हैं, सोनू निगम जी, इन सबको सुन के जो जिस तरीके से वो गाते हैं कोशिश करता हूँ कि वो फील को कैच करूँ किसी तरीके से समझूँ वो। समटाइम तो समझ आ जाती है, समटाइम्स यू नो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो प्रैक्टिस मेरी ये है कि मैं दिन में बाकायदा बाजे पे रियाजत नहीं है मेरी लेकिन मैं गिटार पे गाने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ना वो गाता हूँ ताकि मेरा गला जो है ना वो अपनी जगह पे रहे, और यू नो ये प्रैक्टिस है मेरी बेसिकली। कोई भी गाना मैं उठा लेता हूँ गा लेता हूँ और कहीं पर भी बैठ के हम लोग दोस्त अपना थोड़ा शगल कर लेते हैं हम लोग।
ये बताइए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह बनाए रखना कितना आसान और मुश्किल है?
इंडस्ट्री में जगह बनाना भाई बहुत मुश्किल है, ये ठीक ठाक पैसों यानी इन्वेस्टमेंट का काम है तो आपको मतलब कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप वही बात मैंने अभी इससे पहले भी आपको जवाब दिया है कि आप थोड़ा सा कुछ अर्से के लिए गायब होते हैं तो लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आप फिज़िकली ऑब्वियसली आप अगर सिर्फ म्यूज़िक पे फोकस कर रहे हैं तो आपके जो दूसरे काम है अदर दैन कोई जॉब है कोई बिजनेस है एनीथिंग तो वो फिर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो वो फिर ये टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ठीक ठाक पैसे भाई इन्वॉल्व होते हैं अच्छी रिकॉर्डिंग्स के लिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो फिर यू नो कि मुझे लगता है कि आसान नहीं है इस सेंस में, लेकिन तो अगर तो आप एक अच्छे कंपोज़र हैं अच्छा सिलसिला है तो हम जगह बना सकते हैं। सोशल मीडिया आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बस थोड़े मुस्तकिल मिजाजी और थोड़ा अच्छा काम और लगन मेहनत ये सारी चीज़ें ज़रूरी है और खुदा का करम होना बड़ा ज़रूरी है और आजजी बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, जो जिस इंसान में आर्टिस्ट में आजजी नहीं है और वो तरह आपे से बाहर है तो वो भी किसी काम की चीज़ नहीं है।
बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, थैंक यू सो मच।
چلتا بھی جاؤں میں کیسی ہے یہ بے خودی نرم نرم سی ہے یہ چبھن سی چھونے دے پاس آنے
گلوکار رضوان انور کی کیسی لگی آپ کو یہ بات چیت اور کیسے لگی ان کے گیت آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اور اب چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ راؤنڈ اپ کی جانب ہالی ووڈ گلوکارا میڈونا نے اپنی زندگی پر فلم بنانے اور اسے خود ہی ڈائریکٹ کرنے کا اعلان کیا ہے میڈونا نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی زندگی ایک حیرت انگیز سفر ہے اور اس سفر کی چار دہائیاں چکا چون سے جڑی ہوئی ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس سفر سے لوگوں کو بھی آگاہ کریں میڈونا گلوکارہ موسیقارہ اور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کسی تفریحی پارک میں نصب اور ہوا میں بلکھاتی پٹریوں پر ہچکولے لیتی ٹرین یا رولر کوسٹر کی طرح ہے فلم کے ذریعے ان کے مداح ایسی کئی باتوں اور رازوں سے پردہ اٹھتے دیکھیں گے جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ان کے بقول ان رازوں سے آگاہی اور متاثر کن واقعات کو بیان کرنے والا بھلا ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے اس لیے وہ خود اس سفر کو فلمی سکرین پر پیش کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس فلم کی سب سے خاص بات اس کی موسیقی ہوگی کیونکہ ان کے بقول آج میں جو بھی ہوں موسیقی کی بدولت ہوں اور میرا فن اسی کے سہارے زندہ ہے خبر رسائی ادارے اے ایف پی کے مطابق میڈونا کا شمار ان فلمی شخصیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی کے کئی پہلو مخفی رہے انہوں نے 62 سالہ زندگی میں مذہبی معاملات کی کبھی پرواہ نہیں کی معاشرتی پابندیوں کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لائیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی روایات کی پاسداری کی میڈونا کا شمار متاثر کرنے والی شخصیات میں ہوتا ہے ان کی 30,35,00,000 ایلبمز فروخت ہو چکی ہیں یہ شو پیش کیا جا رہا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اور میں ہوں سعدیہ زبران جھا نواز الدین صدیقی کی اسٹار کاسٹ پر مبنی فلم سیریس مین کو 2 اکتوبر کو ڈیجیٹلی ریلیز کیا جائے گا اس فلم کو سدھیر مشرا نے ڈائریکٹ کیا ہے ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ میں نے 20 سال سدھیر مشرا کے ساتھ کام کرنے کا انتظار کیا ہے اور یہ میرا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ناظرین بھی میرے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں سیریس مین اسی نام کے ناول سے ماخوذ ہے جس کے مصنف ہیں منو جوزف آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ شو سن رہے ہیں اور میں ہوں سعدیہ زبران جھا بابا اعظمی کی ہدایت کاری میں بنی فلم میر اقسم کوئلیشن آف ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول 2020 کی اوپننگ فلم ہوگی اس فلم کی کہانی مجوان کی ایک چھوٹی لڑکی کے گرد گھومتی ہے مجوان مرحوم شاعر کیفی اعظمی کی جائے پیدائش ہے یہ فیسٹیول 3 سے 17 اکتوبر کو آن لائن منعقد ہوگا वेबसाइट glamsham.com के मुताबिक फिल्म में दानिश हुसैन और आदित्य सुबैदी के साथ साथ सुदीप्ता सिंह, राकेश चतुर्वेदी ओम शामिल होंगे, जबकि नसीरुद्दीन शाह मेहमान अदाकार के तौर पर शामिल होंगे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मुसलमान बाप की है जो अपनी बेटी के भारत नाट्यम में एक रकासा बनने के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद करता है और मजहबी और समाजी रुकावटों को अबूर करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं और मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांझा। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazebranjha.voaurdu पर। ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। और अब आपका पसंदीदा ब्यूटी सेगमेंट सुनते हैं मारिया तारड़ से।
आज हम बात करेंगे फेस मास्क की, जो कि घर पे ही बनाए जा सकते हैं घर की ही चीज़ों के साथ, और डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट किस्म के फेस मास्क ज़रूरी होते हैं। तो हम प्राइमरीली बात करेंगे ड्राई स्किन की, कॉम्बिनेशन स्किन की और ऑयली स्किन की। तो पहले हम शुरू करते हैं ड्राई स्किन से। आप ड्राई स्किन के लिए कोई भी ऐसी हार्श चीज़ ना लें जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए या ज़ख़म पैदा करे। जब हम कोई स्क्रब लेते हैं या जब हम कोई स्क्रब यूज़ करते हैं, तो असल में क्या हो रहा होता है कि वो स्क्रब छोटे छोटे आपकी स्किन पे मार्क्स छोड़ता है या ज़ख़म करता है, और वो ज़ख़म जो से होते हैं जब वो रिजुविनेट होते हैं, जब वो सही होते हैं, तो हमारी नई स्किन आती है और हमारी नई स्किन बहुत ही अच्छी और स्मूथ आती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इस तरह के स्क्रब्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन में इतनी पावर नहीं है, इतनी इलास्टिसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सके। तो लिहाजा बहुत ही सॉफ्ट सा हमने मास्क लेना है। स्किन के जनरली बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई मतलब कि आपकी स्किन है, आप उसको प्यार से रखें, उसको साफ रखें, उसकी केयर करें, तो आपकी स्किन आपके लिए बहुत चमकेगी और अच्छी लगेगी। तो ड्राई स्किन की हम बात कर रहे थे। ड्राई स्किन के मास्क के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम एक बनाना, एक केला जो कि हर मौसम में मिलता है, हर घर में होता है, एक केला लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे, हनी, और जितना प्योर आपका शहद होगा उतना ही बेहतर है। इन दोनों चीज़ों को आधा केला ले लें आप और एक चम्मच चीनी की चम्मच शहद की ले लें आप, इनको मैश कर लें और इनको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट अपने फेस पे लगा लें, और वार्म पानी से, नीम गर्म पानी से आप अपना मुंह 15 मिनट के बाद धो लें। आप खुद देखेंगे कि कितनी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज फील करेगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी ड्राई स्किन बहुत ही डल हो गई है और आपका दिल कर रहा है कि थोड़ा सा कुछ उसको रिजुविनेट किया जाए या उसको थोड़ा सा सॉफ्टन किया जाए, तो आप फिर शायद लें एक चमची, ज़रा सा ओटमील लें और ज़रा सा दूध लें, और इन चीज़ों को, ओटमील अगर घर में नहीं है आपके तो आप थोड़े से बादाम क्रश करके भी ले सकते हैं, और इन चीज़ों को अच्छी तरह क्रश करके तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करें। बस ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने फेस की मालिश नहीं करें, क्योंकि इसमें अब हमने थोड़ा सा रफ़ कंपोनेंट डाल दिया, जो ओटमील है या आपके बादाम है वो थोड़े से रफ़ हैं और आप अपनी स्किन पर आराम से लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन की, और कौन सा फेस मास्क कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी हम किचन की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे और कोई ख़ास अजीब चीज़ें नहीं है, ये सब घर में मिलती हैं। हम थोड़ा सा दही लेंगे, एक बड़ा चम्मच दही का लेंगे और एक अंडे की सफ़ेदी, और इसको एक मिक्सिंग बोल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये आप अपने पूरे फेस पे लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और जब आपका फेस मास्क पूरा ड्राई हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो आप इसको नीम गर्म पानी के साथ अपना फेस वॉश कर लेंगे। इधर आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी टाइट हो गई है, और जहाँ से आपको थोड़ी सी इलास्टिसिटी चाहिए वो वहाँ पे होगी। और आखिर में हम बात करेंगे ऑयली स्किन के लिए कौन सा मास्क बेहतर रहेगा। इधर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम फेशियल्स करते हैं या हम अपनी फेस वॉश करते हैं तो हम बहुत हार्श स्टीम लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हैं। ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए, ये आपके ऑयल ग्लैंड्स को और एक्टिवेट करती है, आपको ये नहीं चाहिए। आप अगर स्टीम ले रहे हैं तो आप काफ़ी दूर होकर स्टीम लेंगे, मतलब कि आपके फेस को थोड़ी सी गर्माइश पहुँचे, ऐसा ना हो कि आप पसीनों से भर गए हैं आपका फेस। इधर हम लेंगे अगेन किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन और दही, नींबू और दही, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके वही बात है कि हम जो सा है अपने फेस पे 10 से 15 मिनट तक लगा लेंगे, और जब ये ड्राई हो जाए तो हम अपने फेस को नीम गर्म पानी से धो लेंगे। ऑयली स्किन के लिए अगर आपको कभी ऐसा लगे जैसे आप सिर्फ उसके टॉप लेयर के ऑयल उतारना चाहते हैं, तो आप अपने क्यूकम्बर लें, खीरा जिसको हम कहते हैं, खीरे लें, उनके पतले पतले स्लाइस करें, और एक स्लाइस को जैसे आप फेस पे मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा ऑयल न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये थी हमारे होममेड मास्क की लिस्ट।
ये थी मारिया तारेट, जिनसे आपने ब्यूटी टिप्स सुनी, और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं। और अब बारी है आपके खतूत की। ये खत आया है जनाब, पैगाम आया है बल्कि, रहमत खान का डीजी खान से। लिखते हैं कि आजकल पहले से ज्यादा वक्त है क्योंकि कोरोना ने बाकी मुल्कों के साथ साथ यहाँ भी हालात बदल दिए हैं, तो मैंने सोचा कि क्या करूं। मैं ये बताता चलूं कि मैं एक तालिब इल्म हूं और आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, और इससे पहले छुट्टियां थी तो मैंने बेमसरफ दिन रात गुजारने के बजाय कुछ मुख्तलिफ और फायदेमंद करने का सोचा। हमारे घर के पीछे सहन में झाड़ियां उगी रहती थी हमेशा ही से, तो मैंने इसे पहले तो साफ किया, फिर क्यारियां बनाई और रोजाना के इस्तेमाल की चीजों की एक फहरिस्त बनाकर बीज खरीद कर लाया और वहां लगा दिए, और अब वहां झाड़ियों की जगह धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू और पालक उगाई है। अरे वाह रहमत खान साहब, आपके पास तो काफी जगह थी, आपने तो तकरीबन इस्तेमाल की हर चीज ही उगा ली है। बाजी, मुझे इन सबको देखकर इतनी खुशी होती है, ये साफ सुथरी तो है ही, बहुत सस्ती भी हैं, हर हांडी में डलती हैं ये चीजें। लिखते हैं, मेरी अपने तमाम सामेन से ये गुजारिश है कि वो भी ये सब नहीं तो थोड़ी बहुत सब्जियां अपने घर में उगा ही लें। बहुत अच्छी बात है रहमत साहब, बल्कि हमने एक बार पूरा शो भी किया था कि आप घर में क्या क्या उगा सकते हैं और कैसे, ये तो बहुत ही अच्छा मसरफ निकाला आपने। नादिया अशरफ ने दो चक से लिखा है कि बाजी, मैंने गुजश्ता प्रोग्राम सुना और मारिया बाजी के बताए हुए टोटके इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत शुक्रिया उनका, और अब इंतजार रहेगा कि वो हमें और क्या नया बताएंगी। बिल्कुल नादिया, आप हमारा शो सुनती रहिए जो हर जुमे, हफ्ते और इतवार को नशर होता है पाकिस्तान में रात के 9 बजे, और आप हमें मैसेज भेज सकती हैं facebook.com/sadiazebranjavoaurdu पर, और ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोज देख सकती हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। और आपको बताते चलें कि आप ये शो सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से, और मैं हूँ सादिया जिब्रांझा। अगला पैगाम है नसीर अहमद का, काला शाकाकू से। लिखते हैं, गुज़श्ता प्रोग्राम में कुर्बान की बातें सुनकर बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ और सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे दूसरों को मेरी जात से कोई फायदा पहुंचे। बाजी, बहुत सोचने के बाद मैंने आपकी बातों को सोचते हुए अपने मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे हम सब मिलकर अपने गली मोहल्ले को साफ रख सकते हैं, और खास तौर पर प्लास्टिक के शॉपर्स, जिन्हें आपने कहा था कि शॉपिंग बैग्स कहते हैं, से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि ये दहाइयों तक गलते सड़ते नहीं और कैसे माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। सब बच्चों को साथ मिलाकर मैंने हफ्तावार सफाई का प्रोग्राम तरतीब दिया और हम सब ने गलियां साफ रखने और साफ करने का काम शुरू किया है, और यकीन करें बाजी, इस मुहिम के बाद मैंने खुद को कारामन सा महसूस किया और लगा कि मैंने कोई तामीरी काम किया है जिससे सबको फायदा पहुंचा है। लिखते हैं, हम ये काम हमेशा जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर नसीर, कि आपने ना सिर्फ हमारा शो सुना बल्कि इससे मुतासिर होकर कुछ मुख्तलिफ काम करने का सोचा, और खुशी इस बात की भी है कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ये सिखाया है कि कैसे अपने इलाके को साफ रखा जा सकता है। हमें कुछ तस्वीरें भी आप पोस्ट कीजिएगा, फेसबुक पेज का तो आपको पता ही है, जहां आपने ये पैगाम भेजा है वहीं आप हमें तस्वीरें भी भेज सकते हैं। हुमैरा दिलशाद ने रावलपिंडी से पैगाम भेजा है, लिखती हैं कि मेरे नाक और माथे का हिस्सा ऑयली है और जब मैं मेकअप करती हूँ तो थोड़ी ही देर में वहां से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो जाता है, तो प्लीज मारिया आप इसे पूछ के बताइएगा कि क्या करूं। तो लीजिए, मारिया से ही सुन लीजिए अपने सवाल का जवाब।
तो पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपकी स्किन प्रेप और आपकी बिफोर मेकअप वाली जो उनकी प्रिपरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप मॉइस्चराइज करें अपने फेस को. आई नो कि ऐसे लगता है जैसे मैं ऑलरेडी ऑयली हूँ तो और मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं, लेकिन बेसिक पॉइंट यहाँ ये है कि हम आपकी स्किन की ऑयल ग्लैंड्स को इक्वलाइज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सारे फेस पे एक ही अमाउंट की ऑयल हो और एक ही अमाउंट की ऑयल ग्लैंड्स काम करें. तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन केयर रूटीन की ज़रा केयर करें. मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपनी स्किन पे कोई फेस पाउडर लगाएंगी और फेस पाउडर के बाद आप लगाएंगी फाउंडेशन और फिर आप फेस पाउडर लगाएंगी. लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो जो फेस पाउडर है वो आपकी स्किन से मिलता जुलता हो, बहुत ही लाइट या बहुत ही डार्क ना हो, और जितना भी एक्सेस है वो आप ब्रश ऑफ कर लें. तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट्स की तरफ. सेटिंग पाउडर ले सकते हैं, सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं. आप यूज़ कर सकती हैं उसका सेटिंग स्प्रे और सेटिंग पाउडर.
इसके साथ ही हमारा आज का ये शो खत्म होता है. आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazebranjavoaurdu पर. ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu. अगले हफ्ते आपसे हवा के दोष पर फिर मुलाकात होगी. सादिया ज़िब्रांजो को वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से इजाजत दीजिए. अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगेबान.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
अमेरिका उर्दू है. आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया गया.